नमस्कार भारत, तारीख 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। महाभियोग की प्रक्रिया का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा डेमोक्रेट्स उन्हें हराने के पैतरे खोज रहे हैं।
The Democrats did this hoax during the United Nations week. It was perfect because this way it takes away from these tremendous achievements that were.
एनआरसी पर अरविंद केजरीवाल बोले अगर ये दिल्ली में हुआ तो मनोज तिवारी को छोड़नी होगी दिल्ली।
मैं समझता हूँ वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं कि एक IRS ऑफिसर को ये नहीं पता कि NRC क्या होती है।
बदल चुकी है दुनिया, बदल गए हैं समीकरण, पर क्यों नहीं बदलता संयुक्त राष्ट्र का चेहरा।
अमेरिका चाहता है कि ये जो विस्तार हो वो अभी जो संख्या है उससे 4-5 से ज्यादा ना हो।
खबरें और भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ शुरू की गई महाभियोग की प्रक्रिया की निंदा करते हुए कहा कि ये छल पर आधारित है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने संबंधित मामले में पूरी पारदर्शिता रखी है। दरअसल एक विसल ब्लोअर ने उनके और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बातचीत को लेकर चिंता जताई थी। ट्रंप के कहने पर व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक किया है, जिसमें ट्रंप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से मदद मांगते सुने जा रहे हैं। ब्रिटेन में संसद स्थगित करने के फैसले को गैर कानूनी ठहराए जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संसद पहुंचे, जहां उन्होंने तल्ख अंदाज में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ब्रेग्जिट को विफल करना चाहता है। जॉनसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने जॉनसन से इस्तीफे की मांग की, तो बोरिस जॉनसन ने छोटी पार्टियों से अपील की कि वो उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं ताकि आम चुनाव कराए जा सके।
So we have opposition MPs. That block and delay, everything.
हमारे पास ऐसे विपक्षी सांसद हैं जो हर चीज में रुकावट डालना और हर चीज में देर करवाना चाहते हैं। वो ये करने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये तो हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस को बेहतर करने के विधेयक को भी ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सदन के बाहर मौजूद लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि सच छिपाया नहीं जा सकता। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि देश के तेल उद्योग पर हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने BBC से कहा कि हर कोई युद्ध टालना चाहता है, लेकिन ईरान की जवाबदेही तय की जाएगी। ईरान ने हमले में हाथ होने की बात से इनकार किया है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चेताया कि खाड़ी का क्षेत्र पतन के मुहाने पर है। रूहानी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र से कहा कि जब तक अमरीका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते में वापस नहीं लौटता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। पिछले साल गौकशी की आशंका में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त योगेश राज समेत 4 लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस घटना में हिंसक भीड़ ने यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर के बेटे ने BBC से कहा कि सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की। इसराइल के राष्ट्रपति रेवेन रिविलिन ने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से एक नई सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए कहा है। नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी बेनी गेंट्स ने मिलीजुली सरकार बनाने के न्योते को अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रपति चाहते हैं कि नेतन्याहू गेंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाएं, क्योंकि पिछले हफ्ते हुए चुनाव में दोनों को ही स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। नेतन्याहू के पास अब कम से कम एक महीना है जिसमें वो कई पार्टियों को गठबंधन में उनका समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। मैं जनादेश के सम्मान में हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं सफल नहीं होता तो मैं जनादेश आपको वापस कर दूंगा और भगवान, इसराइल के लोगों और राष्ट्रपति की मदद से हम राष्ट्रीय एकता की एक व्यापक सरकार बनाएंगे। ये थे बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहली बार एक पूर्व यूरोप के शख्स को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए चुना गया है। बुल्गारिया की क्रिस्टलीना गियोवर्गेव क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह लेंगी। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया का सामना कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें हराने के पैतरे खोज रही है। अब व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के फोन कॉल का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति ट्रंप पर अपने पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए रिपोर्ट सलीम रिजवी से।
महाभियोग की प्रक्रिया को अपने खिलाफ बदले की कार्रवाई कहते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोक्रेट्स ने सुनियोजित ढंग से तब ये मामला शुरू किया जब संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के दौरान वो व्यस्त थे।
The Democrats did this hoax during the United Nations week. It was perfect.
ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे देश का नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो भ्रष्ट है और मनगढ़ंत खबरें छापता है। उधर जो बाइडेन ने एक ट्वीट करके कहा है कि प्रतिनिधि सभा को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप को अपने पद के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अमरीका में इंटेलिजेंस विभाग से जुड़े एक कर्मचारी जो विसल ब्लोअर है और उसकी पहचान गुप्त रखी गई है, उसी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद विभाग के इंस्पेक्टर जनरल ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को बताया और उसी के आधार पर प्रतिनिधि सभा ने जाँच शुरू की। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की के बीच फोन पर हुई उस बातचीत का ब्यौरा जारी कर दिया है। जेलेंस्की से इस फोन कॉल में ट्रंप ने 25 जुलाई को डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन और यूक्रेन की एक कंपनी में काम करने वाले जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा। डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उसी के लिए अमरीकी प्रशासन के विभिन्न विभागों से सबूत मांगे जा रहे हैं। बुधवार को फोन कॉल का जो विवरण जारी किया गया है वो ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत के अमरीकी अधिकारी द्वारा नोट किए गए कुछ मुख्य अंश हैं। इन अंशों में लिखा है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से इस बात का जिक्र किया कि जो बाइडेन ने किसी तरह से यूक्रेन के शीर्ष सरकारी वकील विक्टर शौकीन को हटाने के लिए दबाव डाला था। ट्रंप जेलेंस्की से कहते हैं, बाइडेन ने जांच रुकवा दी थी लेकिन बहुत सारे लोग जांच चाहते हैं, इसलिए आप जो कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ट्रंप आगे कहते हैं कि हाँ, आपका देश तो बहुत तरक्की कर सकता है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने चुनावी फायदे के लिए बाइडेन की जांच करवाने के लिए लालच दे रहे थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और प्रतिनिधि सभा की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ ने कहा कि ट्रंप माफिया की तरह यूक्रेन राष्ट्रपति को धमका रहे थे।
दिस इज व्हाट आई नीड, आई नो व्हाट यू नीड। लाइक एनी माफिया बॉस, द प्रेसिडेंट डिडंट नीड टू से That's a nice country you have. It'd be a shame.
डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसद अब ये मांग कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस कमेटी में और भी जितने विसल ब्लोअर हैं वो इस प्रशासन की करतूत सामने लाएं, उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। उधर रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए डेमोक्रेट्स निशाना बना रहे हैं। अगले साल अमरीका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और अब महाभियोग की प्रक्रिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा की संसदीय समितियों के समक्ष ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को तलब किया जाएगा और सारा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
महाभियोग की प्रक्रिया का सामना कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स उन्हें हराने के पैतरे खोज रहे हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। असम में एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के लागू होने के बाद से कई भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से एनआरसी लागू करने की मांग उठ रही है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समर्थन देते हुए अपने अपने प्रदेशों में एनआरसी बनाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली की राजधानी दिल्ली में भी इसे लागू करने की मांग की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। बीबीसी संवाददाता मानसी दास की रिपोर्ट सुनिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल में ये कहकर चर्चा में आ गए कि एनआरसी दिल्ली में लागू हुई तो सबसे पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी को दिल्ली से बाहर जाना होगा। एक संवाददाता सम्मेलन से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी नेता मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए ये कहा,
अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी।
दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कोई पार्टी किसी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और हुआ भी ऐसा ही। केजरीवाल के बयान को प्रदेश बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने फौरन लपक लिया। बुधवार को उन्होंने केजरीवाल के बयान का उत्तर देते हुए कहा,
हम पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ये कहना चाहते हो कि पूर्वांचल से आया हुआ व्यक्ति इलीगल घुसपैठिया है, विदेशी है, दिल्ली से भगाएंगे उसको? प्रवासी लोग जो उत्तरांचल से आए होंगे, हिमाचल से आए होंगे, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब से, उनको आप विदेशी समझते हो, दिल्ली से उनको भगाओगे? आप भी तो उन्हीं में से एक हो। तो अगर अरविंद केजरीवाल की ये नियत है कि जो भी बाहर से प्रवासी आया उसको हम भगा देंगे दिल्ली से, तो मैं समझता हूँ वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। नहीं तो दूसरा सवाल उठता है कि एक IRS ऑफिसर को ये नहीं पता कि NRC क्या होती है।
हालांकि ये पूरा मामला यूं ही शुरू नहीं हुआ। इसी साल अप्रैल में भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि देश भर के भीतर NRC लागू करने का पार्टी वादा करती है।
हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है कि दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
इसके बाद मई में हुए आम चुनावों में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गृहमंत्री बन गए और फिर इसी साल अगस्त में मनोज तिवारी ने NRC लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि दिल्ली में भी अवैध घुसपैठिए वेश बदलकर छिपे हुए हैं। NRC को लेकर उछला ताजा मामला क्या करवट लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक इसे लेकर वाद विवाद और बहस का बाजार बेहद गर्म रहेगा। मानसी दास, BBC दिल्ली।
NRC को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेता की इस बहस ने एक नए प्रश्न को जन्म दिया और वो प्रश्न है कि दिल्ली में आखिरकार कौन यहां का है। विश्लेषण के लिए BBC संवाददाता मानसी दास ने ही बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से।
जो असम का NRC है उसकी पृष्ठभूमि और दिल्ली और उत्तर प्रदेश या राज्यों में NRC कैसे संभव है, क्योंकि वो सवाल ही दूसरा है। असम में पार्टीशन के बाद से ही जनसंख्या इधर से उधर होने को लेकर के कई तरह की शिकायतें थी, तो तब से NRC के प्रश्न उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक निर्देश के तरीके से ये NRC वगैरह का असम में, और उसमें भी जो चीजें सामने आ रही हैं उनको लेकर के कई प्रकार के विवाद हैं। तो मैं नहीं जानता दिल्ली में क्या NRC होगी और अगर NRC किसी एक राज्य में होगी तो उसमें क्या तय होगा। मुझे तो साफ साफ यही लगता है कि ये एक राजनीतिक शगुफा है एक तरह से इसका।
क्या दिल्ली में NRC कभी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल दिल्ली का तो यही है कि दिल्ली में दिल्ली का कौन है।
ठीक है, ये तो अपनी जगह पर बात जो आपने कही वो ठीक है, दिल्ली की क्या, बल्कि जो ऐसे बड़े शहर जहाँ पर, चाहे बम्बई कहें, जहाँ पर रोजगार की और पैसा कमाने की अच्छी संभावनाएं हैं या जीवन बेहतर है, वहाँ दूसरे ऐसे इलाकों से लोग आने लगेंगे या आए हैं जिनके पास साधन कम है। पर दिल्ली को भी, क्योंकि देश की राजधानी है, इसलिए किसी नागरिक का स्वागत ही करना चाहिए। उस बाकी जो आपकी बात है कि दिल्ली शहर की एक अलग से समस्या है कि वहाँ तमाम इलाकों से लोग आए हैं और भीड़ बढ़ गई है, NRC तो उसका कोई हल है नहीं और ना ऐसी किसी NRC की व्यवस्था मुझे लगता है भारत के संविधान के तहत संभव है।
केजरीवाल कहते हैं कि अगर NRC का लागू होता है तो मनोज तिवारी को ही दिल्ली से जाना पड़ेगा, तो एक तरह से वो इस बात का भी अंदेशा देते हैं कि भारत तो एक है लेकिन शायद सारी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं होनी चाहिए और वो सीमाएं कठोर होनी चाहिए।
यही बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, चाहे वो केजरीवाल कहें या मनोज तिवारी कहें, और ना तो ये केजरीवाल का शहर है ना मनोज तिवारी का। एक तरीके से देखेंगे तो दिल्ली तो वो शहर है जिसमें लहरें आती रही हैं, सैकड़ों साल से लोग बाहर से आते रहे हैं और दरअसल सिर्फ हमारे राजनीति में वोट लेने के जो एक नए किस्म के शगुफे, नए किस्म के मुहावरे, नए किस्म के नारे शुरू हो गए हैं जिनके पीछे कोई सोच समझ नहीं है। हम एक ऐसे सवालों को उठा रहे हैं इस वक्त जिसका कोई आधार नहीं। इन चीजों के बजाय हमें जो दिल्ली की जो कुछ भी समस्याएं हैं, संभावनाएं हैं, उसके विकास के जो तौर तरीके हो सकते हैं, हमें उस पर बात करनी चाहिए।
दिल्ली में एनआरसी का मुद्दा विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। गुजरात में सलीम मकरानी ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत गिरफ्तार किया गया था और कानूनी लड़ाई के बाद अब वो जेल से बाहर तो आ गए हैं लेकिन आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। क्या है पूरा मामला और मकरानी की वर्तमान हालात कैसी है, बता रहे हैं अहमदाबाद से बीबीसी संवाददाता रॉक्सी।
इस साल जनवरी के महीने में राजकोट पुलिस ने सलीम मकरानी नामक एक व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी में बीफ बिरयानी बनाकर मेहमानों को खिलाने के आरोप में पकड़ा था। गुजरात में बीफ के व्यापार व ट्रांसपोर्ट पर सरकार का कड़क रवैया रहा है। गुजरात एनिमल प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसके लिए 10 साल तक की सजा है। 1954 से लागू किए गए इस कानून को 2017 में और सख्त किया गया था। सलीम मकरानी इस नए कानून के तहत पकड़े जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
मेरी बेटी की शादी के दिन ही पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। मैं इस केस में गलत फंस गया था। जैसे सभी मुस्लिम समाज के लोग शादियों में खाना मंगवाते हैं, मैंने भी वैसे ही खाना मंगवाया था, पर मेरे पड़ोसी का बछड़ा जब चोरी हो गया तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया था।
राजकोट की डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने इस साल जुलाई के महीने में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सलीम ने बीफ का व्यवसायिक उद्देश्य से उपयोग नहीं किया था, इसलिए उन पर लगाई गई 10 साल की सजा खारिज होनी चाहिए। गुजरात में लागू किए गए इस कानून के बारे में जब समाजशास्त्री गौरांग जानी से हमने बात की तो उन्होंने कहा,
सभी को अपनी पसंद का खाना खाने की आजादी है। खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई शाकाहारी हो सकता है तो कोई मांसाहारी हो सकता है। बीफ खाने का मतलब ये तो नहीं कि आपने गुनाह किया है। देश के कई हिस्सों में बीफ खाया जाता है। अगर आपके खाने पर रोक लगाने के लिए कानून लाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि समाज को ऐसे किसी कानून की जरूरत है।
सलीम मकरानी के इस केस के बाद लोगों के खान पान की आदतों को लेकर क्या ऐसा सख्त कानून होना चाहिए या नहीं, उस पर एक सवाल खड़ा हो चुका है। रॉक्सी गागडेकर छारा, बीबीसी न्यूज, अहमदाबाद।
रॉक्सी की इस रिपोर्ट के बाद अब अखबार के पन्ने पर लट लेते हैं। क्या कह रहे हैं अखबार आज के?
द इंडियन एक्सप्रेस में सबसे ऊपर खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के निवेशकों से बात की और कहा कि भारत आइए, मैं खुद ब्रिज का काम करूंगा। ये खबर लगभग सभी
मतलब गुरप्रीत आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया है।
जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में खुले में शौच कर रहे दो बच्चों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, दो गिरफ्तारी, खबर भी कई अखबारों में दिख रही है।
और bbchindi.com पर भी इस वक्त ये लीड खबर है।
जी। और जनसत्ता के अखबार में पाकिस्तान ने ड्रोन से तरनतारन में गिराए हथियार, पंजाब के तरनतारन जिले में खालिस्तानी चरमपंथी मॉड्यूल के लिए हथियारों व गोला बारूद का जखीरा और नकली मुद्रा गिराने के लिए पाकिस्तान ने 7 से 8 बार जीपीएस युक्त ड्रोन का प्रयोग किया है और पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है इसको लेकर और NIA जाँच की जो है वो सिफारिश की है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है कि पाकिस्तान के नौसेना अभ्यास पर नजर रखने के लिए भारत ने जंगी जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में होने वाली इस अभ्यास में मिसाइलें और रॉकेट शामिल होंगे पाकिस्तान की तरफ से।
और यहाँ पर एक खबर और भी है कि पुलिस एम्बुलेंस और दमकल के लिए सिर्फ एक नंबर बताया जा रहा है वो दिल्ली के लिए है कि अब 100, 101 या 102 जैसे 3 अलग अलग नंबरों की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक नंबर यानी कि 112 नंबर जो है वो तीनों सेवाओं का काम करेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक पीड़िताओं के लिए एक घोषणा की है कि इंसाफ नहीं मिलने तक सरकार हर पीड़िता को साल में 6,000 रुपये देगी। और दबाव बनाने के लिए हुए बेटी की गिरफ्तारी, ये कहा है चिन्मयानंद मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पीड़िता
के पिता ने कि चिन्मयानंद के मामले में जो पीड़िता है वो उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी जमानत याचिका खारिज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे स्थायी स्तंभ दुनिया जहान का। अमरीका के न्यूयॉर्क में इन दिनों दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले चर्चा के लिए एकजुट हैं। 74 सालों से जारी यह सिलसिला हर साल अपने पीछे कई सवाल छोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक क्या योगदान दिया है और आज की तारीख में यह संगठन कितना प्रासंगिक है? दुनिया जहान में आज संदीप सोनी संयुक्त राष्ट्र के अब तक के सफर पर एक नजर दौड़ा रहे हैं।
दुनिया जहान। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन लड़ने वाले देशों से तबाही का धुआं अभी भी उठ रहा था। लड़ाई के जख्म सहलाते देश अब शांति चाहते थे। शांति की तलाश में 50 से ज्यादा देश सैन फ्रांसिस्को में एकजुट हुए और उन्होंने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये दस्तावेज एक चार्टर था जिससे एक नए संगठन संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ।
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
तारीख थी 24 अक्टूबर साल 1945। 51 देशों के साथ अपने सफर की शुरुआत करने वाला संयुक्त राष्ट्र अब एक विशाल परिवार बन चुका है। इस परिवार में आज 193 सदस्य हैं, लेकिन दबदबा हमेशा 5 सदस्यों का रहा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 देश मिलकर सुरक्षा परिषद कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हमेशा इन्हीं देशों की तूती बोलती है। बाकी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका साल में एक बार मिलता है, जब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सालाना विमर्श के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एकजुट होते हैं। भारत के पूर्व राजनयिक मुचकुंद दुबे,
मात्र मंच है जहां पर की दुनिया के 100 से अधिक कमजोर और गरीब देशों के नेताओं को अपनी तरफ से अर्ज करने का अवसर देता है।
मुचकुंद दुबे भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र को करीब से जानने समझने का मौका मिला। संयुक्त राष्ट्र के अब तक के सफर में ऐसे कई मौके आए जो इतिहास में दर्ज हो गए, जैसे 1960 में सोवियत रूस के नेता निकिता ख्रुश्चेव का वाकया।
क्रुश्चेव साहब जनरल असेंबली में थे, जब कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने जूता पटक करके उसके खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया था, और एक शक्तिशाली देश के नेता का इस तरह का व्यवहार लोगों को अजीब सा लगा था, लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। दूसरी घटना यह है कि जो कुछ और एक दो और नेता जो आए हैं, उनको होस्ट कंट्री ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया, उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं
की।
ये साल 2009 की बात है, जब गद्दाफी ने पहली और आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्हें हर सदस्य की तरह अपनी बात कहने के लिए 15 मिनट मिले थे, लेकिन गद्दाफी पूरे 100 मिनट तक बोलते रहे। इतना ही नहीं, इसराइल फलस्तीन संघर्ष के एक राष्ट्र समाधान के विचार को बढ़ावा देने वाले मैनिफेस्टो व्हाइट बुक को उन्होंने तत्कालीन महासचिव बान की मून की ओर उछाल दिया। साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो दृश्य भी नजर आया जब ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने अमेरिका में हुए चरमपंथी हमलों पर सवाल उठाया और इसे अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी हमले का बहाना बताया। ये सुनकर अमरीका और यूरोप के कई देशों के प्रतिनिधियों ने वॉकआउट किया। इसी तरह साल 2006 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शोवेज ने तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बुश के लिए बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें शैतान कहकर सुर्खियां बटोरी। संयुक्त राष्ट्र के मामूली सदस्य और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बीच जमीन आसमान का फर्क रहा है। मुचकुंद दुबे इसकी वजह बताते हैं।
बुतरस गाली एक महासचिव संयुक्त राष्ट्र के हो गए हैं, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है अनवैंक्विस्ट, इसमें उन्होंने हर कदम कदम पर दिखाया है कि किस प्रकार जहां पर कि संयुक्त राष्ट्र को असल में काम करना था वहां उसे काम करने नहीं दिया गया।
संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में उसकी अहम भूमिका है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अवधारणा की गई थी वो इस बात पे की गई थी कि विश्व में शांति बनी रहे और स्थायित्व बना रहे।
प्रोफेसर एसडी मुनी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। उनका मानना है कि जो विषय और मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर होना चाहिए उनमें से कई मुद्दे उसके दायरे से बाहर निकल गए हैं।
देखिए, सबसे बड़ा चुनौती है टेररिज्म की, आतंकवाद की, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का कहीं कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं है। अभी एक मुद्दा पाकिस्तान का है उनके पास में, लेकिन वो कोई पूरा हल नहीं है जो आतंकवाद की समस्या है इस विश्व के सामने। दूसरी तरफ आप देखिए दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक एनर्जी की है, एक क्लाइमेट चेंज की है, और ये दोनों एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के जो मसले हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर हल हो रहे हैं।
It's been 25 years since the Rwandan genocide that saw 800,000 people slaughtered.
25 साल पहले अफ्रीका के रवांडा में 100 दिन के भीतर करीब 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार के दौरान संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक रवांडा में ही मौजूद थे, लेकिन उनकी भूमिका सरकारी अधिकारियों और हमवतन लोगों को निकालने तक सीमित थी।
Srebrenica, the scene of the worst mass killing on European soil since World War II.
संयुक्त राष्ट्र की बड़ी नाकामी का दूसरा चेहरा सर्बनीसा में नजर आया। ऐसा कई मौकों पर हुआ जब संयुक्त राष्ट्र समाधान की बजाय समस्या का हिस्सा बना। संयुक्त राष्ट्र भले ही खुद को एक लोकतांत्रिक ताकत बताता हो, लेकिन इसके भीतर लोकतंत्र पर ही सवाल उठते रहे हैं। सुरक्षा परिषद के विस्तार का मुद्दा इन्हीं सवालों के दायरे में आता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे,
अमेरिका चाहता है कि ये जो विस्तार हो वो अभी जो संख्या है उससे 4-5 से ज्यादा ना हो, और 4-5 से ज्यादा होने से जितने विकासशील राष्ट्र दुनिया के हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा कम सीट के लिए और कभी वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इतने विवाद इसके ऊपर हैं, और ये सारे विवाद ये जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके कारण से ये विवाद है, और जो नए लोग आए उनको वीटो पावर नहीं मिले और वो अपना वीटो पावर एक्सरसाइज करते जाएं जो कि करते रहे।
जानकार मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की असल ताकत सुरक्षा परिषद में निहित है, और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की असल ताकत वीटो में है। किसी भी मुद्दे पर किसी एक सदस्य के वीटो का मतलब है बात आगे नहीं बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर एस डी मुनि,
इस पावर को मैनेज करने का एक ही तरीका है जो 1950s में एक बार हुआ था, एक रेजोल्यूशन कोरिया पे बना था यूनाइटिंग फॉर पीस। ये तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ अटक गया रूस और अमेरिका के बीच में कि कोरिया में क्या करना चाहिए। तो इसका सीधा रास्ता जो मुझे नजर आता है उसके आधार पर वो ये है कि वीटो पावर को खत्म करना चाहिए, और जहां पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में मन मुटाव हो, आपस में कोई सहमति नहीं हो पाए, वो मुद्दा सीधा जनरल असेंबली के सामने ले आना चाहिए।
जो देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा करते रहे उनमें भारत का नाम अग्रणी है, लेकिन भारत और अन्य देशों की राह में रोड़े भी कम नहीं हैं।
सीधी बात है कि जो वहाँ एक तरह से शक्ति का कंसंट्रेशन है, पावर का कंसंट्रेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे चीन है, वो नहीं चाहता कि एशिया में उसके बराबर कोई और हो जिसके पास वीटो पावर हो। ना जापान आ सकता है उसके हिसाब से, ना हिंदुस्तान वहाँ पर जा सकता है उसके हिसाब से।
तमाम तरह की आलोचनाओं के बीच जानकार मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र 21वीं सदी के लिए एक अपरिहार्य संगठन है जिसे पहले से ज्यादा व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहान कार्यक्रम आपने सुना, और ये आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारी इस समय जो वेबसाइट है bbchindi.com, उस पर कौन कौन सी खबरें छपी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश में खुले में शौच कर रहे दलित बच्चों की पीट पीट कर हत्या, ये इस समय की लीड खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की फ़ोन कॉल डिटेल्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। कश्मीर में, यानी कि भारत प्रशासित कश्मीर में, सबको क्यों है 27 सितंबर का इंतज़ार। इन खबरों को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ शुरू की गई महाभियोग की प्रक्रिया की निंदा करते हुए कहा कि ये छल पर आधारित है। ट्रंप के कहने पर व्हाइट हाउस ने ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। ब्रिटेन में संसद स्थगित करने के फैसले को गैर कानूनी ठहराए जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संसद पहुंचे, जहां उन्होंने तल्ख अंदाज में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ब्रेग्जिट को विफल करना चाहता है। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि देश के तेल उद्योग पर हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने BBC से कहा कि हर कोई युद्ध को टालना चाहता है, लेकिन ईरान की जवाबदेही तय की जाएगी। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही।
आज स्टूडियो संभाला था रविशंकर कुमार ने। शाम को निर्धारित समय के मुताबिक यानी कि 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।